महाराज श्रीमद्भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। हिंदी में बोल लेना, हिंदी। तो आज हम श्रीमद् भागवत के नौवें स्कंद से पांचवें अध्याय से श्लोक क्रमांक 22 और 23 पढ़ रहे हैं। अध्याय का नाम है दुर्वासा मुनि को जीवन दान। श्री शुक उवाच एवं संकीर्त्य राजानां दुर्वासाः परितोषितः ययौ विहाय सामंत्र्य ब्रह्मलोकम् अहैतुकम्। श्रीशुक उवाच एवं संकीर्त्य राजानां दुर्वासा परितोषितः ययौ विहाय सामंत्र्य ब्रह्मलोकम् अहैतुकम्। श्री शुक उवाच एवं संकीर्त्य राजानां दुर्वासा परितोषितः ययौ विहाय सामंत्र्य ब्रह्मलोकम् अहैतुकम्। श्री शुक उवाच एवं संकीर्तयं राजं दुर्वासा परितोषितः विहासमन्त्र्य ब्रह्मलोकम् अहेतुकम्। श्री शुक उवाच एवं संकीर्त्य राजानां दुर्वासा परितोषितः ययौ विहाय सामंत्र्य ब्रह्मलोकम् अहेतुकम्। श्री शुक उवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार संकीर्त्य महिमा गान करके राजा नाम राजा को दुर्वासाहा महान योगी दुर्वासा मुनि पारितोषितः सभी प्रकार से संतुष्ट होकर ययौ वहां से चला गया विहायसा अंतरिक्ष मार्ग से आमंत्र्य अनुमति लेकर ब्रह्मलोकम ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक को अहेतुकम शुष्क चिंतन से विहित। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा इस प्रकार सब तरह से संतुष्ट होकर महान योगी दुर्वासा ने अनुमति ले ली और वे राजा का निरंतर यशोगान करते हुए वहां से चले गए। वे आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक गए जो शुष्क ज्ञानियों से रहित है। तात्पर्य यद्यपि दुर्वासा मुनि आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक गए, किंतु उन्हें किसी विमान की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि महान योगीजन बिना किसी यंत्र के एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा करते हैं। सिद्ध लोक के निवासी किसी भी लोक की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें योग की सारी सिद्धियां सहज प्राप्त है। इस तरह महान योगी दुर्वासा मुनि आकाश मार्ग से किसी लोक को, यहाँ तक कि ब्रह्मा लोक को भी जा सकते थे। ब्रह्म लोक में हर व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है और परम सत्य को प्राप्त करने के लिए उसे किसी दार्शनिक चिंतन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्रह्मलोक जाने का उद्देश्य वहाँ के निवासियों को ये बताना था कि भक्त कितना शक्तिशाली होता है और इस भौतिक जगत के हर जीव से आगे निकल जाता है। तथा कथित ज्ञानी तथा योगी किसी भक्त की तुलना में ठहर नहीं सकते। तो अगला श्लोक पढ़ना है, अभी मैं अकेले बोलूँगा। संवत्सरो त्यागात अवध्यावता नागतो गतः मुनिस्तदर्शनाकांक्षो राजा भक्षो बभुवः। दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश के स्थान से चले गए और जब तक वे वापस नहीं लौटे पूरे एक वर्ष तक, तब तक राजा केवल जल पीकर उपवास करते रहे। गते दुर्वास सोम्बरीशो द्विजो पयोगाति पवित्रम अहरत ऋषेर्विमोक्षम व्यसनम च विक्ष्य मेने स्ववीर्यम च परानुभावम। एक वर्ष बाद जब दुर्वासा मुनि लौटे तो राजा अम्बरीश ने उन्हें सभी प्रकार के व्यंजन भरपेट खिलाए और तब सभी स्वयं भी भोजन किया। जब राजा ने देखा कि दुर्वासा दग्ध होने के महान संकट से मुक्त हो गए हैं तो वे ये समझ चुके कि भगवान की कृपा से वो स्वयं भी शक्तिमान है। किंतु उन्होंने इसका श्रेय अपने आप को नहीं दिया, क्योंकि सब कुछ भगवान ने किया था। इसको पढ़ना है पूरा अभी, वैसे आप बोलेंगे वैसे। महाराज अम्बरीश जैसा भक्त नाना प्रकार के कार्यों में सदा व्यस्त रहते हैं। निस्संदेह ये संसार सभी प्रकार के संकटों से भरा पड़ा है जिनसे मनुष्य का सामना होता रहता है, किंतु भगवान पर पूर्णता आश्रित रहने के कारण भक्त तनिक भी विचलित नहीं होता। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण महाराज अम्बरीश हैं। वे सारे जगत के सम्राट थे और उन्हें अनेक कार्य संपन्न करने थे और इन कार्यों के बीच दुर्वासा मुनि जैसे व्यक्ति अनेक प्रकार का व्यवधान उपस्थित करते रहते हैं, और लेकिन राजा इन सबको धैर्यपूर्वक सहता रहा, क्योंकि वो भगवान की कृपा पर पूर्णता निर्भर रहते थे। किंतु भगवान सबके हृदय में स्थित हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, और वे अपनी इच्छानुसार कार्य चलाते रहते हैं। अतः यद्यपि महाराज अम्बरीश को अनेक उपद्रवों का सामना करना पड़ा, किंतु भगवान उन पर दयालु थे, अतएव सारी बातें इस तरह से नियोजित हो सकी कि अंत में दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश महान मित्र बन गए और उन्होंने भक्ति योग के आधार पर मैत्री भाव से एक दूसरे से विदा ले ली। अंततः दुर्वासा मुनि को भक्ति योग की शक्ति पर विश्वास हो गया, यद्यपि वे स्वयं महान योगी थे। अतएव जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवद्गीता में 6 अध्याय में 47 श्लोक में कहा है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में जो योगी श्रद्धापूर्वक मुझ में विश्वास करता है और दिव्य प्रेम भक्ति से मेरी पूजा करता है, वो योग द्वारा मुझसे भली भांति संयुक्त हो जाता है और वो सबसे उच्चस्त होता है। इस तरह ये तथ्य है कि महानतम योगी होता है, जैसा कि महाराज अम्बरीश द्वारा दुर्वास मुनि के साथ किए गए व्यवहार से सिद्ध होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया तस्सुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवत के 9 स्कंद के उपलक्ष्य में ये बहुत सुंदर चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है, बहुत सुंदर चरित्र अम्बरीश महाराज का। श्रीमद् भागवत ऐसे अनमोल रत्नों के चरित्र से भरा हुआ है, इसके द्वारा हम श्रेष्ठ व्यक्ति के चरित्र का श्रवण करके उनके व्यक्तित्व का संग कर सकते हैं। वी कैन एसोसिएट विद देम। इस श्रवण के माध्यम से सुखदेव जी के मुखारविंद से जो ये अमृत का प्रवाह हो रहा है और श्रेष्ठ भक्तों का चरित्र वर्णन हो रहा है। तो पहले श्लोक में कहा गया है कि दुर्वासा मुनि ने, आप सब जानते हैं कथा, आप सुनते आ रहे हैं कि अम्बरीश महाराज का दुर्वासा मुनि ने एक तरह से अपराध किया और अम्बरीश महाराज ने कुछ नहीं किया, लेकिन भगवान ऐसा भक्तों का अपराध सहन नहीं करते हैं, तो उन्होंने चक्र भेज दिया उसके पीछे। और इतना बड़ा योगी आप देख सकते हैं, इतना महान योगी है वो, ब्रह्मा लोक, कैलाश लोक, वैकुंठ लोक तक जाके भगवान से भी वार्तालाप करके आए। वो सामान्य जीव नहीं थे वो, लेकिन ये सब होने पर भी चक्र उनके पीछे लगा है, क्योंकि तो भगवान ये सब होने पर भी अगर वैष्णव अपराध कोई करता है तो छोड़ते नहीं उसको। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हो सकता है हम बड़े ऐश्वर्य वाले हो सकता है हम बड़े शक्तिशाली हो सकता है बड़े पद वाले हो सकता है बहुत हमने पहले अकम्प्लिश किया हो सकता है हमारे बहुत अनुयायी हो सकता है बहुत सुंदर हो, बहुत चीज़ हो सकती है। ये सारा चीज़ भगवान की सेवा में भी हो सकता है, ये सब कुछ भगवान की सेवा में भी अर्पित हो सकता है, और जीवन भर भगवान की सेवा में ही सब कुछ लगाया हो सकता है। लेकिन ये सब होते हुए भी हम सीनियर भी हो सकते हैं, लेकिन किसी जूनियर भी भक्त का अपराध करते हैं तो भगवान उसको सहन नहीं करते। हमारी सारी अचीवमेंट है ना, ये भक्त अपराध के सामने फेल हो जाती है, समझना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके जब हम सीनियर बन जाते हैं तो हमको लगता है ये तो क्या है, कल ही आया हुआ, उसमें क्या है, इसको डांटना मेरा फर्ज है, इसका कल्याण मेरे हाथ में है, ऐसा हमको लग सकता है। लेकिन अगर कल्याण करना अच्छा है, लेकिन उसके दिल को अगर कोई दुखाता है किसी भी माध्यम से, सत्य माध्यम से हो या जायज माध्यम से हो या अनबोनाफाइड माध्यम से हो, अगर किसी भक्त का दिल अगर दुखता है हमारी तरफ से, तो फिर हमारी सारी अचीवमेंट फेल हो जाती है। इसलिए इसी चीज से मतलब बस अभी ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं आई एम सॉरी, शिव जी भी कह रहे हैं आई एम सॉरी, अरे विष्णु भी कह रहे हैं आई एम सॉरी, विष्णु के पास भी गए, अरे आपका ही तो चक्र है, कहते जब मेरे भक्त का अपराध होता है ना तो ये चक्र मेरे नियंत्रण में रहता नहीं है, मेरी भी नहीं सुनता है, और मेरा भी कोई अधिकार नहीं है चक्र को, इतनी शक्ति मुझ में भी नहीं है कि वैष्णव अपराध के बाद में इस चक्र को मैं रोकूं, सो आई एम ऑल्सो हेल्पलेस। तभी क्या किया जाए, बोले जाओ जिसका अपराध किया उसके पास जाओ, अगर वो माफ़ करते हैं तो फिर चक्र कुछ विड्रॉ करने का चांस है। तो गए वो बेचारी, पता है कितना यात्रा किया उन्होंने, अरे पृथ्वी लोक से ब्रह्मा, ब्रह्मा लोक से शिवजी, शिवजी लोक से वैकुंठ, वैकुंठ लोक से वापस पृथ्वी, और भाग रहे हैं, ऐसा नहीं कि आराम से चल रहे हैं, सो रहे हैं बीच में, आराम से भोजन कर रहे हैं, फिर चल रहे हैं, चलने यात्रा आराम से पहुंच जाएगी, नहीं पीछे चक्र लगा हुआ है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा लोक गए तो रुक गए ना वो, और बात कर रहे हैं ना अभी, समझो हम लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं, चक्र पीछे लगा है तो चक्र तो रुकते आपको जलाना चाहिए, तो क्यों नहीं जलाया चक्र ने, कुछ कल्पना है आपको, अभी वो भाग रहे हैं, बीच में हॉल्ट ले रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, तो चक्र भी रुका हुआ है, चक्र को क्या करना चाहिए, तुरंत जाके जलाना चाहिए ना उसको। कहते हैं वो उस समय नम्र अवस्था में झुककर किसी व्यक्ति से, ब्रह्मा शिव जी से याचना कर रहे थे रक्षा की, इसलिए वो जब तक नम्र अवस्था में झुककर डिस्कस कर रहे हैं चक्र जी खड़े हैं, फिर खड़े होकर भाग रहे हैं, फिर वाची पीछे भाग रहे हैं, फिर शिव जी के पास आके प्रणाम किया और झुक के याचना कर रहे हैं, फिर रुक गया, फिर विष्णु के बाद फिर रुक गया, क्योंकि अभी फिर भी डिस्कशन हो रहा है नम्रता से क्या करें बचाएं, और फिर खड़े होकर भागा तो वापस भाग रहे पीछे, और फिर जब फाइनल अम्बरीश महाराज के सामने झुक गए तो फाइनल वो अपना उसने मिशन दुर्वासा को समाप्त कर दिया। तो जब तक उस वैष्णव की हम ऊपर ऊपर से नहीं, हृदय से नहीं क्षमा मांगते हैं, तब तक अपराध से मुक्त नहीं हो सकते। और हो सकता है कि भक्त माफ कर ले उसको, लेकिन भगवान ना वो बहुत गंभीरता से लेते हैं। अभी अम्बरीश जब के पास गए वो, तो बेचारे खड़े, अरे कहाँ गए हमारे यार मेहमान, कहाँ गए अतिथि, कहाँ चले गए। अच्छा अतिथि को भोजन नहीं कराया तो खुद कैसे खा सकता हूँ, तो खड़े हैं। एक साल लगा उनको पूरा भ्रमण करके आने के लिए, और तब तो केवल उपवास करके खड़े हो गए ऊपर। इमेजिन कितना कल्चर है उसके अंदर, राजा के अंदर। और देखो संस्कृति का पालन सब लोग आराम से करते हैं, सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ धन दौलत है, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो हम लोग बड़े उत्साह से संस्कृति का पालन करते हैं, कल्चर का पालन करते हैं, एटिकेट का पालन करते हैं। लेकिन जब संकट आता है ना, कभी जान भी पर भी जान पर भी खतरा मोल पड़ता है, उस समय भी फॉलो कर रहे हैं। ऊपर से पहले एक साल उपवास कर चुके हैं निर्जला, अभी केवल वो आचमन लेकर संतों का डिस्कशन करके उनके साथ परामर्श लेकर वो लिया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने वो उपवास तोड़ भी दिया और नहीं भी तोड़ दिया उन संतों के आदेश से, लेकिन ज़्यादा कुछ भोजन ग्रहण नहीं किया है, कुछ अन्न ग्रहण नहीं किया है, थोड़ा ग्रहण किया है। और अभी एक साल के उपवास के बाद में उनको भी खाना है, लेकिन अतिथि नहीं आया खाया तो खुद खड़े हैं, और एक साल उपवास किया उन्होंने। जब अतिथि आए तो अतिथि को लग रहा है कि अरे बाप रे कितने क्रुद्ध होंगे मेरे ऊपर, गुस्सा होंगे मेरे ऊपर, तो शांति से खड़े, महाराज कहाँ चले गए आप, तो क्षमा करना। भाई क्षमा करने का कोई काम ही नहीं, कुछ आपने कुछ किया ही नहीं, मैं क्या करूँ। तो वैष्णव जो होता है वो, हमने कई आचार्यों से सुना है कि वो अपराध है ना वो ग्रहण ही नहीं करता है। ये वैष्णव का अपना अपना एक अपना लेवल है, भगवान करते हैं उसके प्रति क्या, वो अपराध को ग्रहण करते हैं, लेकिन वैष्णव होने के पहले उसको ग्रहण नहीं करते, उसको पहले माफ़ भी कर देते उसको। तो मृष के मन में कुछ दुख नहीं था उसके बारे में, लेकिन दुर्वासा मुनि को वो रिचुअल करना पड़ा हृदय से। अगर ऊपर ऊपर से करते, अरे कौन राजा है इसके वजह से भी तकलीफ इतनी हो रही है, चलो माफ़ मांग लेते हैं छुटकारा हो जाएगा, नहीं, हृदय से जब भी उन्होंने माफ़ी मांगी तब वो चक्र निकल गया। उसका उसका क्या प्रूफ क्या है उसका, कि उन्होंने हृदय से मांगी क्षमा, जब चक्र चला गया मतलब वो स्टैंप लग गया उसका कि अभी उसने हृदय से मांगी है, वो अभी क्षमा के पात्र हो गया है। तभी अमरीश का चरित्र देखिए, पहले एक तो प्रभुपाद जी पहले तात्पर्य में बता रहे हैं कि देखो ये मुनि लोग कितने शक्तिशाली होते हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कोई उनको विमान की ज़रूरत नहीं है, कोई ईंधन की ज़रूरत नहीं, कोई गैस स्टेशन की ज़रूरत नहीं है, सीधे जा रहे हैं। इतने महान योगी हुआ करते थे, लेकिन भक्त के सामने योगी भी तुच्छ है, वो भगवान परवाह नहीं करते। ऐसे एफ्लुएंट आदमी की तरफ से भगवान प्रभावित नहीं होते। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे बहुत सारे योगी कहते हैं, जैसे बंदर होता है ना, बंदर वो जन्म से ही गोल्ड मेडलिस्ट होता है एथलेटिक्स में, कोई ट्रेनिंग लेता है क्या, वो ट्रेनिंग नहीं, वो कई ट्रेनिंग, जन्म होते ही पूरा एथलेटिक चैंपियन है वो। हम लोग तो बिना मेहनत करके फिर चैंपियन बन जाते हैं, वो तो जन्म से ही एथलेटिक चैंपियन है। वैसे सिद्ध लोक में सब लोग जन्मता ही सिद्ध है, कोई योग वो तपस्या वो कोई साधना करने की जरूरत नहीं, वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन वो यहाँ से वहाँ उड़ने के लिए जरूरी नहीं है। जैसे पंछी कैसे जन्मता ही उड़ने में एक्सपर्ट होता है, वो थोड़ा देर के बाद उड़ने लगता है, और हम लोग को हवाई जहाज में बैठना पड़ता है बहुत सारा रिसर्च करके। तो वैसे वैसे सिद्ध लोग के जीवों को वो सब सारी सिद्धियाँ जन्मजात प्राप्त हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है वो, इट्स नॉट वेरी इम्प्रेसिव। भगवान उससे इम्प्रेस नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सिद्धलोक में मैंने जन्म दिया है और मैंने ही उनको जन्म से ही वो गोल्ड मेडलिस्ट बना दिया है, तो उसमें उनको गर्व करने की जरूरत क्या है, तो वो रेडीमेड प्राप्ति है आपको, आपने कर्म किए होंगे लेकिन दिया वो जो है सिद्धि तो है तो मैंने दी है। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं ऐसे 50 प्रकार के योगी होते हैं, कोई नई बात नहीं है, ऐसे हर एक प्रकार के अलग अलग लोग, अभी इसमें उड़ने वाला योगी है, उसमें तो मन से यात्रा करने वाला योगी है, उसमें तो सूक्ष्म प्रकार के आनंद प्राप्त करने वाले योगी है, बाह्य दृष्टि से सिद्धियां प्राप्त नहीं है, वो सब अंदर की सिद्धियां हैं, अंदर का मन का तपश्चर्या का आनंद है, बुद्धि का आनंद है। ऐसे सब लोग भगवान नहीं बने, नॉट इम्प्रेसिव। तो ऐसे सारे योगियों का जो समुदाय है उनमें से जो मुझ में जुड़ा हुआ है वही सबसे महान है। योगी नाम अपनी सर्वेशां मद गति अंतरात्मना, मेरे अंदर जिसकी गति मन की गति बसी हुई है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो किसी को कंडेम नहीं कर रहे हो, लेकिन बता रहे हैं आप सब कुछ ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर मुझे प्राप्त करना है तो आपको ये सारे योग मुझमें स्थित करने होंगे, क्योंकि वो स्वयं योगेश्वर हैं। फिर अगले तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये देखो भक्ति करने में ऐसे ना बहुत लोगों का पाला पड़ता है, ठाकुर भक्ति विनोद को वो ऋषिकेश मिला था, है ना, ऐसा बाल निकाल के कुछ कुछ करता था वो, बहुत भयंकर था आदमी वो। तो भक्ति विनोद ठाकुर के भक्ति जीवन के बीच में ऐसा एक भयंकर आदमी आया, उधर भी सिद्ध हो गया कि वो जब आया ना तो ठाकुर भक्ति विनोद को ब्रिटिशों ने भेजा था कि भाई ये बहुत भयंकर आदमी है, इसने ऐसा ऐलान कर दिया है कि मैं ब्रिटिशों का राज जो है नष्ट कर दूंगा। तो वो भी इंडियन है, साधु जो भी है, चमत्कारी बाबा, और ये भी हमारे अधिकारी भी हिंदू है, चलो इनको ही लगा देंगे उनके पीछे, वही अपना कांटे से कांटा निकाला निकाल देगा। तो जब वहाँ पहुँचे तो ठाकुर भक्ति विनोद ने उनको कहा कि अरे तुम ऐसे भगवान भगवान क्यों बोलते हो खुद को, तो भगवान तो हो नहीं ना तुम। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे चरणों में भगवान सब भक्त आकर गिर जाते हैं और मुझे भगवान करके पुकारते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उस आनंद को मैं त्याग नहीं कर सकता। तो वो जो साधु था ना ऋषिकेशन, वो सबके मन की बात जानता था, उसके पास सिद्धि थी। जैसे मैं भी बैठा हूँ तो सबके मन में क्या चल रहा है वो पढ़ रहा हूँ, वो भी एक सिद्धि है, ऐसी सिद्धि उसके पास थी। ठाकुर भक्ति विनोद ने बोला कि उसको, उसने उनको कहा भक्ति विनोद जी मैं जानता हूँ आप क्यों आए हो, मतलब ब्रिटिशों ने आपको भेजा है मेरा क्या कहते हैं उसको, मेरा कांटा निकालने के लिए। तो ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि अगर तुम मेरे मन की बात, मेरे उद्देश्य को मुझे देख के ही पढ़ सकते हो तो तुम तो ये भी जानते होंगे तुम भगवान नहीं हो। यस यस आई नो, फिर क्यों करते हो ये सब कुछ। बोले वो जो आनंद है ना भगवान बनने का, चरणों में लोग गिर रहे हैं भगवान के, वो मैं त्याग नहीं कर सकता। और फिर श्रीमद् भागवत को हाथ में रखे उसने उसकी सारी सिद्धियों को डिफीट कर दिया, कुछ नहीं कर, बहुत सारे ऐसे भूत प्रेत ऐसी शक्तियां भेजी उनके ऊपर, भागवत पढ़ते रहे भगवान का नाम लेते रहे, तो कोई भी उसकी योगिक सिद्धियां उनको स्पर्श नहीं कर सकी। ऊपर से उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया, बाद में उनके बाल कटवा कर सारी सिद्धियों को नष्ट करके, बाल कटवाते ही उसकी मृत्यु हो गई। इसका मतलब क्या, इतने दिनों तक इतने महीनों तक सबको प्रभावित करके रखा था उसने अपने योग से बल से, फिर कुछ गलत उपयोग भी कर रहा था, लेकिन केवल शुद्ध भक्ति मार्ग के का प्रभाव से ये सारी सिद्धियों को परास्त किया गया। लेकिन प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं कि ऐसे जो प्रामाणिक भक्त है उसके जीवन में ऐसे लोग आते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग, अभी हमको वैसे नहीं मिलेंगे जो बाल निकाल कर राक्षस को पैदा कर रहे हैं वो, लेकिन क्या करेंगे अपने अधिकार में, किसी पुलिस को बोलेंगे, किसी इसको बोलेंगे इसको निकाल दो, इसका वीजा नष्ट कर दो, इसका ये करो उसका वो करो। तो शुद्ध भक्त के जीवन में जब कार्य भक्ति के चलते रहते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे व्यवधान आते रहते हैं, इट इज़ बट नेचुरल। अगर आप भौतिक दुनिया में जी रहे हैं तो भक्ति मार्ग को अपनाते हुए भी हमारे रास्ते में ऐसे ऐसे कष्ट आते रहेंगे, तो क्या करना चाहिए उसका भक्त अम्बरीश महाराज ने हमको एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है कि उससे वो कतई तौर पर डिस्टर्ब नहीं हुए। हाँ, ऐसे संकट तो आते रहते लेकिन भगवान पर जो पूर्णता आश्रित है वो कभी भी तनिक भी विचलित नहीं होता, उससे उसको सहन करते हुए आगे चलता है। और उसका परिणाम क्या हुआ, अगर वो दुर्वासा द्वारा जो कष्ट उत्पन्न किया, अभी देखो बेचारे जन कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं, कुछ उपवास कर रहे हैं, व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका समापन करना है, विश्व का कल्याण करना है, अच्छा कार्य कर रहे हैं वो, फिर बीच में आते हैं और राक्षस को पैदा करते हैं और ऐसा नहीं किया तुमने, मेरे आने के पहले कैसे आचमन ग्रहण कर लिया। तो ऐसा लिखा है कई जगह पर कि अम्बरीश महाराज के भक्ति के होने पर उनके अंदर उतनी शक्ति थी कि वो भी अपने आप के स्तर पर उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। क्योंकि जो जैसे शाप देना तो आसान होता है, और अम्बरीश के पास वैसा शक्ति था कि दुर्वासा को रिटर्न शाप दे सकते थे वो, उनके द्वारा निर्माण किया शक्ति को परास्त करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो इतने भगवान के चरणों में आश्रित थे अपने हृदय के स्तर पर, उन्होंने कहा कि भगवान की इच्छा है अगर मैं मर जाऊँ तो ठीक है, मैं क्यों उसके लिए संघर्ष करूँ, और भगवान की इच्छा है अगर मुझे बचाएं तो ठीक है मैं बचा लेंगे, वो उनका उनका प्रॉब्लम है, मुझे रखना है कि बचाना है, नॉट माय प्रेरोगेटिव, दिस इज हिज प्रेरोगेटिव। इतनी शरणागति, अभी ऐसे शरणागत भक्त जब होता है ना, अरे भगवान भी मजबूर हो जाते हैं। जैसे कोई बालक आपके गोद में है एक महीने का, वो कितना शरणागत रहता है। तो माता ना पूरा सब कुछ छोड़ के छुट्टी वुट्टी लेके उसकी पूरी देखभाल करती है, क्योंकि ये व्यक्ति मेरे ऊपर पूर्णतः निर्भर है, इसका हर चीज जो है, हर हित जो है वो मेरे में डिपेंड है। जब बड़ा होता है, स्कूल जाता है, फिर वो कम हो जाता है, फिर वो इतना ठीक है, अपना अपना इंडिपेंडेंट देख रहा है, वो प्रेम है, सब कुछ है, देखभाल भी है। लेकिन जो देखभाल गोद वाले बालक में होती है, गोद बालक बालक के लिए होती है, वो आज हमारे लिए नहीं होती है। हम भी किसी के माँ बेटा है, आज भी हमारी माँ भी अभी भी है, लेकिन आज वो निर्भरता नहीं है उसके ऊपर। तो ऐसे भक्त की बालक की तरह निर्भरता पूरे जीवन भर होती है। हम लोग कैसे है ना, वी ग्रेजुएट, माँ के गोद से हम ग्रेजुएट हो जाते हैं और कुछ अलग काम करने लगते हैं। तो हमारे शरणागति में माँ के एक स्थितियाँ हैं जो हम जिससे हम गुजरते हैं। लेकिन भक्त जो है वो इंडिपेंडेंट से लेकर माँ के गोद तक यात्रा करता है, मतलब जो बाहर है वो माँ की गोद में दोबारा आ रहे हैं शरणागति होने के लिए। उस तरह से वो जो भगवान को छोड़कर जो जुदा हो गए थे, वो अभी सब कुछ छोड़कर वापस भगवान की गोद में आ रहे हैं। और ऐसा भक्त जब भी भगवान की गोद में आके शरण लेता है, तो भगवान कण कण पर, क्षण क्षण पर उसकी देखभाल करते हैं। उसका जो हित है वो भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि उस हद तक भगवान का भक्त अपने आप को उनकी गोद में रखता है। कष्ट तो होता है, देखो अभी कोई ऐसा राक्षस आया सामने, बाल छोड़ के राक्षस खड़ा कर दिया आपके सामने, तो कष्ट होगा ना आपको, कि मारने आ रहा है आपको, तो क्या कष्ट तो होगा ही। या कोई आके आपके सेवा में व्यवधान किया, कोई आपके गाली दे दिया, तो कुछ कंपन तो होता है ना इधर, कितने भी स्थित प्रज्ञ होंगे हम, लेकिन उसको सहते हैं वो लोग। और उसके सहने के वजह से दुर्वासा मुनि भी दंग रह गए, मैं इतना तो गुस्सा कर दिया, मैंने राक्षस को पैदा किया इतने से चीज पर, और ये व्यक्ति 1 साल तक मेरे लिए खड़ा है। और जहां गए वो समझ गए कि अरे इसकी शक्ति जो है वो मेरी योग शक्ति से भी कई ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जहां जहां जा रहा हूं मैं, बड़े बड़े पोस्ट में जो लोगों को मिलने जा रहा हूं अपने पावर से, लेकिन वो लोग भी असहाय हैं। और ये सामने खड़ा हुआ है, कोई बाल निकाल कर राक्षस को पैदा नहीं कर रहे हैं, कोई सेना मेरे पीछे नहीं भेज रहा है, राजा होने पर भी उसके पास बहुत बल था, राजा अम्बरीश के पास, वो चक्रवर्ती सम्राट थे, चाहे तो सेना को लगा देते उनके पीछे, ये मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं और मैं जन कल्याण का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी ना करते हुए खाली खड़ा है हाथ जोड़ के, कोई अपशब्द उच्चारण भी नहीं किया, कुछ रिस्पॉन्स में कुछ कठोर वचन भी नहीं बोले, मैंने जो भी किया वो वैसे ही शांत रहा, वैसे ही रहा, उसका मन का संतुलन जरा भी बिगड़ा नहीं। और ऐसा करने पर भी मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वो लोग खुद मुझे अपने आप को असहाय बता रहे हैं, इसका मतलब वो जो भी कुछ कर रहा है वो मेरे जो कार्य है उससे कई गुना श्रेष्ठ है। मैं योग बल से यहाँ वहाँ जा रहा हूँ, अपना अपना हाई लेवल कॉन्टैक्ट को आजमाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मेरा योग बल और मेरा प्रयास सब फेल हो रहा है इस भक्त के सामने। इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास जो भी कुछ है वो उसके पास जो भी कुछ है उसके सामने तुच्छ है, ये उसको अनुभूति हुई, ये उसको अनुभूति हुई। और फिर वो गौरव के सर पे आया, पहले अपराध के भाव में था, फिर उसी व्यक्ति के गौरव पे सर पे आया। ये उसकी भी यात्रा है, वो तो फिजिकली यात्रा कर रहा है, ब्रह्मा शिवा ब्रह्म वैकुंठ लोक थे, लेकिन उसकी अंतरात्मा की यात्रा भी हो रही है, अपराध भावना से, फिर डर की भावना से, फिर शेल्टर मांगने की भावना से, फिर उसको ये अनुभूति हो रही है कि अरे ऐसा है, फिर वो गौरव की भावना में उसका इसकी यात्रा हो रही है, और अभी उसको साक्षात्कार हुआ है पूरा। हाँ, जिस अमरीश महाराज के प्रति क्रोध करके शाप देकर राक्षस भेजकर मारना चाहा, वो स्थिति से उसकी यात्रा हो रही है, ही इज प्रोग्रेसिंग इंटरनली, और उसी व्यक्ति के गौरव के स्तर पर आ गए वो, और गौरव करते 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 भी नीचे उतर रहे हैं। बाद में लिखा है कि अम्बरीश महाराज को भी अंदर से अनुभूति हुई कि मैंने जो भी कुछ किया उसमें भी शक्ति है, वो समझ गए कि मेरे पास भगवान की कृपा की शक्ति है, जिसके वजह से यही जो मुझे मारने के लिए बाल तोड़कर राक्षस बनाकर प्रयास कर रहे थे, वो भी गौरव करते करते ही मेरे चरणों में आ गए। कुछ गर्व नहीं कर रहे वो, लेकिन उनको भी जो देख रहे हैं उससे कुछ अनुभूति हो रही है। लेकिन वो इम्पोर्टेंट क्या है, अगर हमें उसकी अनुभूति होती तो हम लोग तुरंत बोलते अब आए हो उस पार के नीचे, अब समझ में आया ना तुमको मैं कौन हूं, बार बार राक्षस निकाल के मारने का प्रयास कर रहे थे, अब समझ में आया ना, अभी सही रहो आप, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। हम लोग ऐसे ही बोलेंगे, जो पहले ऐसे ऐसा करके आया था अभी ऐसे करके आ रहा है, हम लोग तुरंत अपना भी दिखाएंगे ना, अब समझ गया ना मैं कौन हूं। आगे आइंदा गुस्सा की मत करना, कुछ नहीं बोले, ये उनकी मान्यता है। इसलिए समदुखो जया लाभा लाभो जया जयो, वो श्लोक जो है ना, ये उसका प्रमाण है कि दुख में भी सम है, सुख में भी सम है, आतंक हो रहा है तभी भी सम है, गौरव हो रहा है तभी भी सम है, वो आदमी राक्षस डाल कर मारने का प्रयास कर रहा है तभी भी सम है, वही आदमी आके गौरव कर रहा है तभी भी सम है, कोई लहरें नहीं उठ रही है दुख की और आनंद की, दोनों स्थिति में सम है। कितना आनंद होना मन में आपको कि ये व्यक्ति ने मुझे मारना चाहा, और वही व्यक्ति मेरे चरणों में आके गिर रहा है, सविजयी भाव हो गया ना अपना कि देखो मैं विजयी हो गया, मेरे भक्ति की विजय हो गई। कुछ है ही नहीं, ना विजय का गर्व है, ना दुख का पश्चाताप है, ना कुछ परेशान है, ये बहुत डिफिकल्ट स्थिति है। लेकिन ना इससे हम जरूर प्रेरणा ले सकते हैं कि हमारे भी छोटे से भक्ति जीवन में, छोटे से प्रयास में भी लोग बहुत बाधा डालते हैं, कभी कभी अपने डालते हैं, कभी पराये डालते हैं, हाँ, तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए इसका ये प्रमाण है। और उसका अंजाम देखिए, उन्होंने अपने आप को वैसे ही रखा जैसे वो थे, उसका परिणाम क्या हुआ, उसके हृदय में परिवर्तन हुआ। अगर वो उसको क्या करते हैं, उसको रिस्पांस देते अपनी तरफ से शाप के रूप में या किसी रूप में, तो वो परिवर्तन नहीं प्राप्त होता दुर्वासा में। तो अपने संयम से, अभी एक साल बीत गया कि नहीं बीच में, उनको एक साल पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है भाई, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि वापस कैसे आएगा, दंडा लेके आएगा कि वापस शरणागति होके आएगा, उसको पता नहीं है। तो अपने अपने ही स्थिति में स्थित है वो, शांत चित्त से, कोई चल विचल नहीं है, हलवा हलचल नहीं है, कभी खाने को मिलेगा, कभी आएगा आदमी, कब तक उपवास करूं, क्या हो रहा है, मतलब अभी क्या करें, कितना अभी कष्ट उठाएं, कोई विचलता नहीं है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब हम किसी के द्वारा हुए हुए आतंक को सहन करते हैं, अपने आप को वैसे ही रखते हैं जैसे हम पहले थे, तो कुछ समय लगता है, लेकिन उसके बाद में वो जीवन का परिवर्तन जो है वो हमको दिखता है उसके मन में। और मैंने भी ये मेरे जीवन में अनुभव किया, इसलिए मैं ये समझ सकता हूँ कि अम्बरीश कितने होशियार व्यक्ति हैं। किसी भी स्थिति में आप जो है जेन्युइन, कहते हैं ना उसको, रियलिस्टिकली डिवोटी, वैसे ही बने रहो। सामने राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति आया तो राक्षस प्रवृत्ति की तरह उसको प्रतिसाद मत दो, सामने कोई गौरव करने वाला आया तो उसको उस रूप में प्रतिसाद मत दो, अपना जो वैष्णवत्व है उसको बनाए रखो। अपराधी व्यक्ति भी आएगा तो भी अपना जो स्थिति है उसको विचलित मत होने दो, टिट फैट टिट फॉर टैट मत करो, क्योंकि टिट फॉर टैट दुनिया के लोग करते हैं और उसी सर पे रहते हैं। भगवान का ध्यान आकर्षित करना है तो क्या करना चाहिए, जो आम लोग नहीं करते हैं वो जब भक्त करता है तो भगवान दिखा रही ये कौन है, हु इज दिस मैन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोगों को ना सभी घटनाओं में से भगवान का ही ध्यान आकर्षित करना है। हम लोग हारे या जीते, बट इन द एंड, हारने के बाद भी अगर भगवान का ध्यान आकर्षित हमारे और हो गया तो हमारा पर्पज फुलफिल हो गया। जीत गए और जीतने के बाद भी हमारे असामान्य व्यवहार से भगवान का ध्यान आकर्षित हो गया तो भी हम यशस्वी हैं। हमने कई बार सुना है कि जब दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा होता है, समझो भक्त के बीच में कुछ वाद विवाद हो रहा है, तो आम जनता क्या देखेगी कि इसमें सही कौन है, और जो सही व्यक्ति है कैसे अपना सत्यत्व सिद्ध करेगा और उसको झूठ वाले को परास्त करेगा, जो गलत है उसको डिफीट करेगा, ये जनता देखती रहती है। लेकिन भगवान क्या देखते हैं कि इसमें नम्र कौन है, हु टेक्स द हम्बल पोजिशन। चाहे आप अपने अपने वाद विवाद में परास्त हो जाएंगे, दुनिया के सर पर परास्त हो जाएंगे, लेकिन नम्रता के ग्रहण करने से भगवान की दृष्टि से यशस्वी हो जाएंगे। संत लोग कहते हैं कि जो झगड़े में नम्र स्थिति को लेता है, अपने बात को कहता है लेकिन एग्रेसिवली कहने की जरूरत नहीं, नम्रता से उस बात को प्रस्तुत करता है, और भले वो स्वीकार भी नहीं की जाए, वो परास्त भी हो जाए, फिर भी उसके नम्रता के रुख से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान की दृष्टि से बाजी वो जीत जाता है, क्योंकि उसने इस स्थिति का उपयोग भगवान का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया, भगवान को उसने प्रभावित किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है। अम्बरीश महाराज ने वही किया, कभी भी रिटेलिएट नहीं किया, उसे प्रतिद्वंद्वी रूप में भाव नहीं किया, एक्शन नहीं किया उन्होंने, उसका अंजाम क्या हुआ, वो भी सुरक्षित रहे और सबसे बड़ी बात जो अपराधी व्यक्ति था उसका हृदय परिवर्तन हो गया। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, टू डिफीट यू और टू हैव हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन यू? सिंपल, वो व्यक्ति को मैं दुश्मन दुश्मन मेरा बनाए रखूं कि वो व्यक्ति मेरा दोस्त बन जाए मेरे व्यवहार से? संभावना यही थी कि दोनों दुश्मन बने रहे, कि तुमने मुझ पर राक्षस डाला मारने के लिए, तो दुश्मनी बने रहना स्वाभाविक था। लेकिन अम्बरीश महाराज के असामान्य व्यवहार से क्या लिखा है इसमें, वो बहुत अच्छे मित्र बन गए, वो प्रेम से विदा करते गौरव करते करते चले गए। सो ये जो स्थिति है ना, दिस इज वांछनीय, ये हमको चाहिए जीवन में, क्योंकि भौतिक दुनिया में जीते हुए ना मतभेद तो होते रहते हैं और वो होंगे ही, पति पत्नी में होते, माता पिता में होते, क्या उसमें विशेष क्या है उसमें? लेकिन वो सारे वाद विवाद में, सारे द्वंद्व में, सारे झगड़े में जो कोई नम्रता को बनाए रखता है, आखिर सबका दिल वही जीतता है। लोग उसको ही आकर फिर क्षमा मांगते हैं कि भाई प्रभु जी हमने आपको कितना कष्ट दिया, आपने कभी विरोध नहीं किया उसका, हम माफ़ी चाहते हैं आपसे, क्षमा कर दीजिए हमें आप। तो वो जो हृदय परिवर्तन है एग्रेशन से लेकर नम्रता तक, वो परिवर्तन दूसरों के हृदय में तब होता है जब हमारा व्यवहार जेन्युइन होता है। उसको क्या शब्द है हिंदी में पता नहीं,
स्वाभाविक
एकदम, अपने आत्मा का स्वभाव कैसा है, भगवान का भक्त होने का वैष्णव तरीका कैसा है, वो तरीका ना बनाए रखो। दूसरों की जैसे जैसे व्यवहार होते हैं वैसे वैसे उसको उसी रूप में रिएक्ट मत करो। तो क्या कर रहे हैं हम लोग उससे, अगर उसी को रिएक्ट कर रहे हैं उसके स्तर पर जाकर, उसी लेवल पर जाकर फाइट कर रहे हैं। अगर आपको सुअर से फाइट करना है तो आपको गंदा होना ही पड़ेगा, क्योंकि गटर से ही निकलता है बाहर समस्या। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है ना, वो सुअर के झगड़े में पड़ता ही नहीं है, कुछ भी हो रहा है उससे आतंक दूर रहता है उसे, क्योंकि उस अगर आपने उसके साथ झगड़ा करने का प्रयास किया तो क्या होगा, सारी गटर की गंदगी जो गटर में जाए बिना ही आपके सर पे आ जाएगी। तो हम लोग जो भक्त होते हैं, वी डोंट वॉन्ट टू गो टू देयर लेवल, उनके स्तर पर जाकर उनको वन टू वन करने की हमको जरूरत नहीं है, हमको अपने स्तर पर रहते हुए अपने आप को बरकरार रखना है, और यहाँ से क्या हो सकता है उतना ही हम कर सकते हैं। तो दुर्वासा मुनि ने अपने योग बल से कुछ किया, तो मुझे भी अपने योग बल से कुछ करना है, वन टू वन, लाभ क्या है उससे? हाँ, कुछ क्षण के लिए आप जीत सकते हो, उसके बाद क्या, दुश्मनी बढ़ेगी, वो परास्त होगा तो उसका क्रोध बढ़ेगा, फिर वो प्रतिशोध की तैयारी करेगा, फिर आप कुछ करेंगे, फिर वो कुछ करेगा। जैसे गौलोक में जब ना भक्तों के बीच प्रेम हमेशा बढ़ते 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 रहता है, वैसा यहाँ पर दुश्मनी बढ़ते बढ़ते बढ़ती रहती है, क्योंकि हम नहीं छोड़ेंगे वो नहीं छोड़ेगा, हम नहीं छोड़ेंगे वो नहीं छोड़ेगा, चलते रहेगा। व्हाट इज द गेन, कुछ फायदा नहीं उसके, ना आपको लाभ है ना उनको लाभ है। और ऐसे विजय में भी एक बहुत दुख का अंतर्भाव होता है, आपने डिफीट कर दिया लेकिन आपको अंदर से समाधान शांति आनंद का अनुभव नहीं होता है, जो आत्मा का स्वभाव है। मतलब ऐसे करतूत करने से आत्मा के स्वभाव को हम खुद ही डिफीट कर रहे हैं, अपने आप के लिए डिफीट कर रहे हैं। इसलिए एक तो हमें खुद आनंदी रहना है, शांत रहना है, और भगवान को प्रसन्न भी करना है। इसलिए भक्त जो है ऐसे जो मामले हैं इसमें ज़्यादा घुसता नहीं है, उसको वहीं छोड़ देता है। और सबसे बड़ी भक्त की ये बात होती है कि वो ना तुरंत क्षमा कर देता है और भूल भी जाता है, याद भी नहीं रखता है। और ये गुण जो है ना भगवान को बड़ा पसंद है, तो कोई किंतु परंतु मन में रखता नहीं है, भूल भी जाता है तुरंत ही, ये गुण भगवान को बड़ा पसंद आता है। अम्बरीश महाराज उसका एक आदर्श उदाहरण है, और सामान्य गरीब भिक्षुक व्यक्ति नहीं है वो, शक्तिशाली राजा है वो, चक्रवर्ती सम्राट है, उसके पास कोई बल की कमी नहीं है। लेकिन सारे बल ऐश्वर्य होने पर भी जो नम्र रह सकता है उसी को कह सकते हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त है। बरसाने में कहते हैं कि जब सब प्रकार के ऐश्वर्य होने के पश्चात भी आदमी जब नम्र बनता है तो वो राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु की कृपा का लक्षण है, वो जैसा सिम्टम ऑफ प्रूफ ऑफ द मर्सी ऑफ राधा रानी ऑन दैट पर्सन, कि इतना सब होने पर भी वो प्रभावित नहीं है उस ऐश्वर्य से, वो अपना नम्रता बनाए रखता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस प्रभु जी, प्रश्नोत्तर का समय है, ठीक है बोलिए।
हरे कृष्णा, जैसे आपने बोला प्रभु जी कि अपराध नहीं करना चाहिए,
और जो भक्त के लक्षण हैं कि वो अपराध नहीं करता है, पर जो हम मैं हूँ, मैं भक्त बनने के प्रयत्न में लगा हूँ, और जो मेरे गुण हैं, स्वभाव हैं, जो मैंने अर्जित किया है अनेक योनियों के द्वारा, तो वो स्वभाव मेरा कैसे परिवर्तित होगा और कैसे मैं मन या तो वाक के या तो अपने काया के द्वारा अपराध ना कर सकूं, ऐसा कैसे कर सकते हैं?
एक तो प्रवचन सुनिए रेगुलरली, इस अध्याय को, ऐसे अध्याय जो है वो पढ़ते रहिए। और साधक स्थिति में हम लोग तो अमृत जैसे नहीं हैं, हम लोग तो भी प्रगति मार्ग में हैं, लेकिन साधक स्थिति में साधना को अच्छी तरह से करते ही रहना चाहिए, साथ साथ उसको कहते हैं सातत्यपूर्ण, यानी कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक। तो हम लोग अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में स्कूल में गए तो स्ट्रेट MBBS से बन सकते क्या? नहीं, आपको जाना पड़ेगा धीरे 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 धीरे, यू आर प्रोग्रेसिंग स्लोली 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 ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स द गोल। तो साधना पर विश्वास रखिए, और बीच में कभी अपने हाथ से गड़बड़ हो गया, कुछ जो होना चाहिए था वो नहीं, गलत कुछ कर लिया, ठीक है, भक्तों का संग बनाए रखिए, कोई सी देर भक्त से संपर्क रखिए, उससे गाइडेंस लीजिए, गलती हो गई तो सुधारना कैसे है, दोबारा कैसे नहीं करना है, ये सब देखना है, और साधना जो है ना उसको बनाए रखिए। ये सब जो अम्बरीश महाराज के अंदर हमको दिख रहा है ना, उनकी साधना का परिणाम है, उनकी साधना कितनी उच्च प्रकार की है ये उनके व्यवहार से दिखाई पड़ रहा है। साधना करते हुए किसी देखा नहीं उनको, लेकिन उनके व्यवहार से दिखाई पड़ रहा है कि उनकी साधना कितनी उच्च प्रकार की थी। और वो उच्च प्रकार की साधना करने के लिए भी टाइम लगता है, वो डे वन से उस स्थिति में नहीं थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया है उसके लिए, बहुत मेहनत की है। तो हमको भी वो पूरे संयम के साथ में जब तक ये स्थिति ना आ जाए तब तक प्रयास करते रहना है, छोड़ना नहीं है उसको। यस प्रभु जी,
इसमें बोल रहे हो, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, साधु आपने इतना सुंदर क्लास दिया। प्रभु जी जैसे आपने तो काफी पहले से यूथ से जर्नी स्टार्ट किया और फिर गृहस्थ में आए, तो आपने कई लोगों को सुनता भी होगा, आपको भी करते होंगे करेक्ट, और अभी आप जैसे काउंसलर भी हैं तो आप भी कई लोगों को समझाते हैं, करेक्ट करते हैं, तो इसमें कौन सी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो, कहीं ना कहीं फालसफो तो है ही, तो उसके अंदर तो उसके हृदय में कष्ट हो ही रहा है, जो भी आपने बोला है ना, उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी जैसे अभी बोल रहे हैं अपने अपने लेक्चर्स में कि अगर जो मर्ज काफी ज्यादा बड़ा है तो या तो उसकी दवा कड़वी होगी या फिर उसको ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा।
देखो, अगर आपका जो कार्य है वो अधिकार के स्थान से आप कर रहे हो, मतलब अगर आप किसी काउंसलर हो तो आप एक स्थिति में हो और व्यक्ति के प्रति आपका कुछ कर्तव्य है, अगर आप गुरु हो तो शिष्य के प्रति आपका कुछ कर्तव्य है, अगर आप माँ हो तो पुत्र के प्रति आपका कुछ कर्तव्य है, उसमें कुछ कठोर काम करने पड़ते हैं जिसमें आपको तकलीफ भी हो सकती है। लेकिन जब वो आप अपने ऑथोराइज स्थान से कल्याण के हेतु, उसके अच्छे के लिए हेतु, निरपेक्ष भाव से कर रहे हैं, मतलब आपको मुझे डांटने में कोई आनंद नहीं हो रहा है बट आपका कल्याण है उसके लिए, इसलिए डांटना पड़ रहा है इच्छा न होते हुए भी, लेकिन डांटेंगे क्योंकि वो जरूरी है आपको इस समय, या कड़वी देना, अभी बुखार में कड़वी दवा देना जरूरी है, तो फिर वो न हिचकचाते हुए देना है। लेकिन कैसे दे रहे हैं, एक तो डॉक्टर हैं और दूसरे के प्रति कल्याण की भावना है, तो उसमें जो दर्द होता है वो अपराध में नहीं गिना जाता है। जैसे जब माँ आपको डांटती है कुछ चीज़ के लिए आपने गलत करने के बाद में, तो वो माँ का अपराध नहीं है आपके प्रति, वो आपके कल्याण के कारण कर रहे हैं। अपराध तब होता है जब आपका कुछ निहित स्वार्थ होता है उसमें, मेरा अपमान हो गया इसलिए मैं आपको राक्षस भेज के मारने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं जो है ना उसमें इन्वॉल्व है। जब माँ किसी बालक को कुछ दंड देती है तो वो मैं नहीं होता है उसके अंदर कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये बालक को मारते हुए, ऐसा नहीं हो रहा है, तो दुख हो रहा है उसको, लेकिन कल्याण की भावना से वो कर रही है। तो गुरु अपने शिष्य को डांटते हैं तो गुरु को क्या लाभ है उसमें? कुछ लाभ नहीं, केवल परोपकार के भावना से डांटते हैं वो। तो वो अगर आपका अधिकार नहीं है तो आप दुनिया को उपदेश करते हुए मत घूमो, अगर आपका कोई पोजीशन है तो ही उपदेश करने का प्रयास करो। अगर आप वो व्यक्ति मुमुक्षु है, आपसे उपदेश आता है, या आपका उस पर अधिकार है, जैसे गुरु का शिष्य पर अधिकार है और शिष्य गलती कर रहा है, तो गुरु को फिर वो अपने अधिकारमय स्थान से उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि डोंट डू दिस। लेकिन वो गुरु जो हैं वो दुनिया को जाके ऐसे उपदेश नहीं करेंगे, उपदेश करेंगे शास्त्र के, लेकिन डांटने का काम सबके लिए नहीं करेंगे, केवल उनके लिए करेंगे जो उनकी शिष्यत्व को स्वीकार किए हुए हैं। तो ऐसे अपराध नहीं गिना जाता है प्रभु जी, नहीं तो फिर सर भी गुरु अपराधी हो जाते हैं, वो कितने डांटते हैं शिष्य को अपने।
प्रभु जस्ट एक क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति आपके गुरु के लिए जाने अनजाने कुछ अपराध करता है या अपमान करता है, तो हमारा क्या फर्ज है? हम उसको
तुरंत उसको डिफीट करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि हमारे पर जो कोई अपराध करेगा तो अमृत जैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन वरिष्ठ भक्तों के लिए, गुरुजनों के लिए, संतों के लिए अपराध करता है तो उसको वहाँ खड़े होकर डिफीट करना चाहिए। तीन चीज़ें बताएगी शास्त्र में, आपको खड़े खड़े वहाँ पर उसको डिफीट करना चाहिए अपने वाक चातुर्य से, बुद्धि से, तथ्य से, प्रमाण से। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको जबान अपनी काट देनी चाहिए, और वो अगर नहीं कर सकते हैं तो तुरंत वहाँ से निकल जाना चाहिए। उस स्थान में, उस अवस्था में वहाँ पर बने रहना अपराध करने जाए जैसा ही है। किसी के संत के विषय में, गुरुजनों के विषय में अपराध सुनना भी हमारे तरफ से अपराध करने जैसा ही है। जैसे किसी अबला को हिंसा होते हुए आप देख रहे हो और वहीं खड़े हो, तो आपके तरफ से भी हिंसा होने का अपराध आपको लगता है। किसी बालक को कुछ कष्ट दिया जा रहा है और आप वहीं खड़े हो, उसको देख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप भी बालक को कष्ट देने के अपराध में सम्मिलित हो। इसलिए दूसरे जनों के लिए, संतजनों के लिए, गुरुजनों के लिए जब अपराध होता है तो आपको ना हनुमान जैसा बनना चाहिए, लंका को दहन करने के भाव में रहना चाहिए आपको। लेकिन जब वही अपराध आपके लिए होता है तो आपको शांत रहना चाहिए।
अगर पर जो अगर गुरु का भाव है कि जो ये भक्त, जैसे कि अगर क्लास में कोई नया भक्त आता है, कोई वो अपराध कर रहा है, पर जो शिक्षा गुरु है या तो गुरु है, उसका भाव है कि नहीं इसको टाइम दें विनम्रतापूर्वक, तो अगर आप रिएक्ट कर देते हो तो अगर वो व्यक्ति चला जाता है छोड़।
इसलिए ना ये सब बहुत सेंसिटिव बातें हैं, और उसको समझ बूझ कर स्थिति के अनुसार उसके प्रति कार्य करना चाहिए। कभी कभी हम लोग जैसे बच्चों को इतना कठोरता से व्यवहार नहीं करते उनसे, वो थोड़ा सा अभी खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, बहुत शोर मचा रहा है कथा में, तो जाके ऐसा तुरंत पीटने शुरू नहीं करते उनको, क्योंकि वो फिर वो मंदिर में आएगा ही नहीं बाद में। तो स्थिति को देखते हुए हमको बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जो अनुकूल है हमारे भविष्य के लिए, लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिशियल है, तो कभी कभी सहन कर लेते हैं, कभी कभी जाके बोल लेते हैं, कभी कभी अगर आपका इतना रिश्ता अच्छा है तो डांट भी देते हैं। डांट किसको मिलती है पता है आपको? जिसका रिश्ता होता है, सबको डांट नहीं मिलती है। जब क्लोज रिश्ता होता है ना तभी वो डांट वांट का समय आता है। अगर ऊपर ऊपर का रिश्ता है तो लोग बोलते हैं ठीक है, छोड़ जाते हैं और दूर चले जाते हैं उससे। लेकिन पास वाले व्यक्ति को फिर डांट देते हैं। जो रिश्ता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काउंसलर काउंसलिंग का, गुरु शिष्य का, शिक्षा गुरु और शिक्षा शिष्य का जब रिश्ता होता है मजबूत गहरा, तब ये सारे डांटने वाली बात हो सकती है। नहीं तो ऐसा फॉर्मल इनफॉर्मल फॉर्मल रिश्ता होगा तो उसमें सब जगह डांट वांट का होता नहीं है। और कोई गुरु बैठे हैं कथा कर रहे हैं, उसमें किसी और के शिष्य ने कुछ अपराध किया तो उसको जाकर डांटना शुरू नहीं करेंगे, वो अपने शिष्य को डांटेंगे, क्योंकि उनका रिश्ता अधिकार भी है, रिश्ता भी है। और हम किसी को अपराध करते हुए देख रहे हैं तो हम जाके डायरेक्ट डांटेंगे नहीं उसको, अरे उसका काउंसलर कौन है, उसका भक्ति वृक्ष का गाइड कौन है, उसके कौन अथॉरिटी है, उनको जाके बोलेंगे और उनकी तरफ से उनको कुछ कहना है तो उपाय करवाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं किस तरफ से करना है, क्या स्थिति है उनकी, खुद जाके वो अधिकार अपने हाथ में लेते नहीं हो। इसलिए हमको तो ऐसा प्रवृत्ति होती है कि चलो जाके तुरंत जाके करेक्ट करें किसी को, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना वो ऐसे करता नहीं है। वो पहले अपना अधिकार है क्या, इज इट इन माई सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो पहले सोचेगा। नहीं है तो जिसका है उसको जाके बोलेगा, और भी कल्याण की भावना से करेगा। हमको भी वैसे ही करना चाहिए। वी डोंट हैव टू रिएक्ट इमीडिएटली, टेक अ डीप ब्रेथ बिफोर यू रिएक्ट, सो यू विल नो कि दिस इज नॉट गुड एंड यू विल स्टॉप। साई विल ऑल्सो स्टॉप नाउ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।